लाउडेटर यीशुस क्रिस्टस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि प्रायः आपराधिक तस्करी के शिकार बनने वाले हमारे आप्रवासी भाइयों और बहनों की पुकार सुनी जाए तथा उनकी पुकार हमारे चिंतन का विषय बने। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज हमारे प्रसारण विषय है सामायिक लोकोपकारी चर्चा भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है सिस्टर अनुग्रह मिंज और जूलियट क्रिस्टोफर। संयुक्त राष्ट्र इस वर्ष सितंबर 2020 में संयुक्त राष्ट्र की 75वीं वर्षगांठ पर एक उच्च स्तरीय कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इस कार्यक्रम के दौरान संयुक्त राष्ट्र विश्व नेताओं के सामने प्रमुख वैश्विक चुनौतियों के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की अपेक्षाओं को प्रस्तुत करेगा। इसके लिए संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष के शुरू से ही UN 75 संवाद नामक एक पहल शुरू की है। इस पहल का उद्देश्य प्रमुख वैश्विक चुनौतियों के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की अपेक्षाओं को बेहतर ढंग से समझना है। इन संवादों के लोगों को प्रेरित और सूचित करने के लिए UN बॉक्स मीडिया के ब्रांड स्टूडियो बॉक्स क्रिएटिव के साथ भी साझेदारी करेगा। इस पहल को वैश्विक स्तर पर वास्तविकता को परखने का एक अवसर बताया गया है, जिसमें एक बेहतर भविष्य के निर्माण से संबंधित बातचीत को बढ़ावा दिया जाएगा। UN 75 संवाद की मदद से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नीतियों और विचार विमर्श के लिए आंकड़ों को जुटाने में मदद मिलेगी। आइए सुनते हैं इसी पर विस्तार से।
संयुक्त राष्ट्र ने दुनिया के भविष्य पर चर्चा में सभी की हिस्सेदारी को सुनिश्चित करने के इरादे से एक नई मुहिम UN 75 संवाद को शुरू किया है। इस मुहिम के जरिए साल भर सुझावों और समाधानों को जुटाकर उन्हें सितंबर 2020 में संयुक्त राष्ट्र की 75वीं वर्षगांठ पर आयोजित होने वाले एक उच्च स्तरीय कार्यक्रम में विश्व नेताओं के सामने पेश किया जाएगा। UN 75 नाम से शुरू हुई इस पहल को वैश्विक स्तर पर वास्तविकता को परखने का एक ऐसा अवसर बताया गया है, जिसमें बेहतर भविष्य के निर्माण से संबंधित बातचीत को बढ़ावा दिया जाएगा। शिवानी काला की रिपोर्ट।
दुनिया भर में होने वाले इन विचार विमर्शों को चार अभिनव डेटा स्ट्रीम के सहारे समझने और पेश करने का प्रयास किया जाएगा और पहली बार वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए लोगों के सुझावों व समाधानों का संग्रह तैयार होगा। इस मुहिम में एक मिनट का सर्वे होगा, 50 देशों में जनता की राय जानी जाएगी और 70 देशों में पारंपरिक व सोशल मीडिया का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटिमेंट एनालिसिस पूरा किया जाएगा। UN 75 संवाद की मदद से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नीतियों और विचार विमर्श के लिए आंकड़ों को जुटाने में मदद मिलेगी। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेश इस प्रक्रिया से जुटाए गए राय मशवरों को विश्व नेताओं और यूएन के वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष 21 सितंबर 2020 को होने वाले एक उच्च स्तरीय आयोजन के दौरान पेश करेंगे। यूएन महासचिव ने इस प्रक्रिया में हिस्सेदारी का आह्वान करते हुए ध्यान दिलाया है कि कोई भी देश, कोई भी समुदाय दुनिया की जटिल समस्याओं को अकेले नहीं सुलझा सकता है। हमें साथ आने की जरूरत है, न सिर्फ बात करने के लिए बल्कि सुनने के लिए भी। सीमाओं, क्षेत्रों और पीढ़ियों से परे जाकर समुदायों के साथ संपर्क साधने के लिए UN 75 की टीम संयुक्त राष्ट्र के रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर सहित विभिन्न सेक्टरों में एक व्यापक नेटवर्क के साथ मिलकर काम करेगी। युवाओं और उन समूहों पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा जिनका यूएन के साथ पहले से संपर्क नहीं है।
भारत में नीति आयोग के टिकाऊ विकास लक्ष्य यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDGs पर आधारित इंडियन इंडेक्स का दूसरा संस्करण जारी किया गया है, जिससे यह जानने में मदद मिलेगी कि 2030 एजेंडा को हासिल करने में भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा किए गए प्रयास कितने सफल हो रहे हैं। SDG इंडिया इंडेक्स को भारत के सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, संयुक्त राष्ट्र भारत कार्यालय और ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इंस्टीट्यूट के सहयोग से विकसित किया गया है। SDG इंडिया इंडेक्स 2 और डैशबोर्ड से भारत को अपने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के SDG लक्ष्यों में प्रगति को मापने और प्रोत्साहन देने में मदद मिलेगी। आइए सुनते हैं इसी पर विस्तार से।
भारत में नीति आयोग ने टिकाऊ विकास लक्ष्यों की दिशा में हो रही प्रगति को आंकने के लिए एक इंडेक्स का दूसरा संस्करण जारी किया है, जिसे SDG इंडिया इंडेक्स का नाम दिया गया है। दिल्ली में अंशु शर्मा ने इस विषय में ज्यादा जानकारी के लिए नीति आयोग में सलाहकार संयुक्ता समादार से बात की और सबसे पहले पूछा कि SDG इंडिया इंडेक्स की खास बात क्या है।
इस साल जो SDG इंडिया इंडेक्स और डैशबोर्ड हमने लॉन्च किया है नीति आयोग में, अगर आप उसे देखें तो वो 2018 में जो हमने पहली बार जो ये इंडेक्स लॉन्च किया था उससे बहुत ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव और ब्रॉड बेस्ड है। 2018 का जो इंडेक्स है वो खाली 13 गोल्स कवर करता था जबकि 17 गोल्स हैं। इस बार हमने ये प्रयास किया है कि अधिक से अधिक रेलिवेंट इंडिकेटर्स लिए जाएं, इसलिए हमने अपने इंडिकेटर्स की जो बेस है वो 62 से बढ़ा के 100 तक कर दिया है ताकि ये सारे गोल्स को कवर करे। तो अर्थात ये है कि इस बार का इंडेक्स 1 से लेकर 16 तक प्रत्येक गोल पे मेजर करता है कि हर स्टेट और यूटी में कितना प्रोग्रेस हुआ है, और साथ ही जो गोल नंबर 17 है जो पार्टनरशिप्स पे फोकस करता है उस पे एक क्वालिटेटिव एनालिसिस किया है। इसके साथ साथ इस साल का इंडेक्स के साथ एक डैशबोर्ड भी, बहुत आधुनिक डैशबोर्ड लॉन्च हुआ है जो बहुत ही इंटरैक्टिव है, ट्रांसपेरेंट है और यूजर फ्रेंडली है।
तो ये SDGs नापने के लिए मेथोडोलॉजी, तो तरीका है, वो क्या अपनाया जाता है?
SDGs को नापने के लिए, क्योंकि ये एक इतना कॉम्प्लेक्स एजेंडा है जो 17 सेक्टर्स में प्रभावित है और इंटरकनेक्टेड है, एक दूसरे में को बहुत ज्यादा तरीके से इफेक्ट करते हैं, इम्पैक्ट करते हैं, बट हमने एक सिंपल तरीका अपनाया है जिसमें हमने प्रत्येक गोल के 5-6 इंडिकेटर्स जो हमारे नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क से डिराइव्ड हैं उनको हमने लिया है, और ये इंडिकेटर्स में हम डेटा कलेक्ट करते हैं स्पेशली स्टेट लेवल डेटा का, क्योंकि हम इसमें स्टेट्स को माप रहे हैं। इनसे हमें एक डिसेंट पिक्चर मिलता है कि हेल्थ में हो, एजुकेशन में हो या स्वच्छता में हो, किस तरह की हमारी एक इमेज निकल के आती है। तो इन इंडिकेटर्स को लेके, इनका डेटा लेके, फिर इनको एक स्टेटिस्टिकल मेथड से जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है उससे हम इसको नॉर्मलाइज करते हैं, और नॉर्मलाइज करके एक डिस्टेंस टू टारगेट निकालते हैं जो 0 से 100 के बीच में होता है। तो इसमें जितने अधिक अंक किसी स्टेट को मिलता है उतना उसने टारगेट की पास तक अचीव कर लिया है और उतना कम एरिया बचता है काम करने के लिए। तो ये हमारी स्टेटिस्टिकल मेथड है। बट इसमें मैं ये भी बताना चाहूंगी कि लास्ट टाइम जब 2018 का इंडेक्स रिलीज हुआ था हमें बहुत कंस्ट्रक्टिव फीडबैक मिला था फ्रॉम बहुत सोर्सेज से, एकेडमिशियन से, मीडिया से। जो हमें फीडबैक मिला था इनको सब हमने, इनका समायोजन करके हमारी मेथडोलॉजी को बहुत और रोबस्ट किया है और साउंड किया है, और इसमें मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने भी हमारा बहुत साथ दिया है।
तो आज SDG, जैसा कि आपने बताया, SDG डैशबोर्ड भी लॉन्च हुआ है, ये किसके लिए है और किस तरह से ये SDGs के इम्प्लीमेंटेशन में मदद करेगा?
रिपोर्ट आपको आप जानते हैं कि सब लोग नहीं पढ़ पाते हैं, क्यों, सबके पास इतना ना समय होता है ना इतना सबके पास रीच भी नहीं होता कि रिपोर्ट पढ़े, इसीलिए ये ताकि ये अधिक से अधिक प्रत्येक नागरिक तक पहुंचे। तो एक डैशबोर्ड एक ऐसा तरीका होता है जिसमें आप एक क्लिक करने पे ही आपको आंकड़े सामने बहुत सरलता से दिखाई देता है, और विजुअलाइजेशंस के माध्यम से आपको प्रत्येक व्यक्ति को बड़ी सरलता से पता चलता है कि कौन से सेक्टर में प्रोग्रेस हो रहा है, कौन से राज्य में बेहतर काम हो रहा है, और किन कारणों से, अगर कमी है या बेशी है तो किन कारणों से है। इस डैशबोर्ड की खासियत यह है कि ये बहुत सरलता से, बहुत कॉम्प्लेक्स फॉर्मूले से आधारित जो आंकड़े हैं, जो रिजल्ट हैं, बहुत सरलता से लोगों तक पहुंचाती है। अब इसकी बेनिफिट ये है कि न केवल जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं, चाहे वो भारत सरकार में हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट्स में हो, और विभिन्न लाइन मिनिस्ट्रीज हैं, वो अपना देख सकते हैं कि कितना उनका प्रोग्रेस हुआ है और कितना और कार्य करने की आवश्यकता है।
आज के सभी विषय संयुक्त राष्ट्र संघ रेडियो द्वारा तैयार किए गए थे, जिन्हें प्रस्तुत कर रहे थे सचिन गौड़। और अब आइए सुनते हैं आज का भक्ति गीत और उसके बाद समाचार।
सच्चिदानंद की वंदना करें, जीवन ज्योति की वंदना करें।
आप वेटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए अब प्रस्तुत हैं समाचार। स्पेन के मैड्रिड शहर में 14 से 16 फरवरी तक आयोजित लोक धर्मियों के राष्ट्रीय सम्मेलन के उपलक्ष्य में संत पापा फ्रांसिस ने मैड्रिड के महाधर्माध्यक्ष कार्डिनल पेरेस के नाम एक संदेश प्रेषित कर लोक धर्मियों की प्रेरिताई के महत्व को प्रकाशित किया। स्पेन के कैथोलिक धर्माध्यक्षीय सम्मेलन के तत्वाधान में आयोजित लोक धर्मियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का विषय है नित्य आगे बढ़ती ईश प्रजा। इस संदर्भ में संत पापा फ्रांसिस ने अपने संदेश में लिखा, धर्माध्यक्षों, धर्म समाजियों, धर्म संघियों और लोक धर्मी कैथोलिकों से निर्मित कलीसिया ईश प्रजा है, जो प्रेरितिक आवेग को और अधिक केंद्रित, उदार और फलदायी बनाने के लिए विवेक, शुद्धि और सुधार की एक निर्धारित प्रक्रिया में प्रवेश करती है। संत पापा फ्रांसिस ने कहा कि सभी बपतिस्मा प्राप्त विश्वासी कलीसिया के मिशन में आधारभूत भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि लोक धर्मी कैथोलिक विश्वासी शिक्षा, मीडिया, स्वास्थ्य तथा विशेष रूप से जनता की राय के निर्माण में मदद प्रदान कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि लोक धर्मी सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनैतिक जीवन से संबंधित हर चीज में अपना मूल्यवान योगदान प्रदान कर कलीसिया को विश्व में व्याप्त विभिन्न स्थितियों से अवगत कराते तथा उनका सामना करने के लिए उसे तैयार करते हैं। संत पापा ने कहा कि लोक धर्मी विश्वासी अपने दैनिक जीवन में अपने विश्वास का साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए बुलाए गए हैं, तथापि उन्होंने कहा यह साक्ष्य वैयक्तिक न होकर सामुदायिक साक्ष्य होना चाहिए ताकि विश्व एक साथ तीर्थ यात्रा करती ईश प्रजा का साक्षात्कार कर सके। वैटिकन स्थित जीवन संबंधी परम धर्म पीठीय अकादमी कृत्रिम बुद्धि में नैतिकता के प्रश्न पर एक कार्यशाला का आयोजन कर रही है, जिसमें भाग लेने के लिए सभी आमंत्रित हैं। वैटिकन द्वारा आयोजित यह कार्यशाला 26 से 28 फरवरी तक जारी रहेगी। विगत वर्ष जीवन संबंधी परम धर्म पीठीय अकादमी ने रोबोटिक्स में नैतिकता के प्रश्न पर एक शिविर का आयोजन किया था। उसी श्रृंखला में कृत्रिम बुद्धि में नैतिकता विषय पर उक्त कार्यशाला का आयोजन किया गया है। 26 से 28 फरवरी तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर कार्यशाला 2020 में भाग लेने के लिए सभी का स्वागत है, बशर्ते कि वे ऑनलाइन पंजीकरण करें। कार्यशाला के प्रतिभागी नैतिकता, कानून और स्वास्थ्य के संदर्भ में कृत्रिम बुद्धि पर विशद चिंतन करेंगे। अध्ययन सत्र के पहले दो दिन उत्तम एल्गोरिथम प्रश्न पर चर्चा करने में व्यतीत होंगे। कार्यशाला का अंतिम दिन मानव केंद्रित कृत्रिम बुद्धि विषय पर केंद्रित रहेगा। जीवन संबंधी परम धर्म पीठी अकादमी के अध्यक्ष महाधर्माध्यक्ष विंचेंसो पालिया ने इस विषय में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि अकादमी ने वर्ष 2019-2020 को रोबो नैतिकता और तथाकथित कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जुड़े नैतिक मानव शास्त्रीय प्रश्न पर समर्पित रखा है। उन्होंने कहा कि संत पापा फ्रांसिस ने परम धर्म पीठी अकादमी से विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रवेश करने तथा साहस एवं विवेक के साथ उनका पालन करने का आग्रह किया था। कोरोना वायरस महामारी के प्रसार को रोकने के लिए हांगकांग की कलीसिया कड़े उपाय कर रही है। इस सिलसिले में हांगकांग महाधर्म प्रांत ने कैथोलिक धर्मानुयायियों को ख्रीस्तियागों से छूट दे रखी है, ताकि सार्वजनिक समारोहों को रोकने के द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण से बचा जा सके। हांगकांग महाधर्म प्रांत में 15 फरवरी से 28 फरवरी तक गिरजाघरों में रविवार ख्रिस्तियाग समारोहों को स्थगित कर दिया है और साथ ही राख बुधवार के धर्म विधिक समारोह को भी रद्द कर दिया है, जो चालीसा काल के आरंभ को चिन्हित करता है। हांगकांग महाधर्म प्रांत के प्रेरित प्रशासक कार्डिनल जॉन टोंग ने इस कदम को निराशाजनक बताया, किंतु कहा कि यह निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि आगामी 2 सप्ताह महामारी के प्रसार को रोकने के लिए निर्णायक समय होगा। उन्होंने बताया कि महाधर्म प्रांत ने एक ओर गिरजाघरों में ख्रिस्तियागों और अन्य धर्म विधिक समारोहों से लोगों को छुट्टी दे दी है, किंतु दूसरी ओर महाधर्म प्रांत ख्रिस्तियाग का टेलीविजन द्वारा सीधा प्रसारण कर लोगों को ख्रिस्तियागों में शामिल होने के लिए आमंत्रित कर रहा है, ताकि कैथोलिक धर्मानुयायी शारीरिक रूप के बजाय आध्यात्मिक रूप से परम प्रसाद ग्रहण कर सकें। हांगकांग में कोरोना वायरस से संक्रमित 50 मामलों की पुष्टि की गई है तथा एक व्यक्ति इस महामारी से मौत का शिकार हुआ है। सैकड़ों लोग अब आत्म अलगाव की स्थिति में हैं अथवा उन पर निगरानी रखी जा रही है। हांगकांग में सेवारत पल्ली पुरोहित फ्रांसीसी मिशनरी फादर निकोलस दे फ्रैंक विले ने वैटिकन रेडियो से बातचीत में कहा, यह परीक्षा की घड़ी है, तथापि हमें उम्मीद है कि यह संकट लोगों को चिंतन का मौका देगा तथा जीवन के मूल्यों की खोज में उनकी मदद करेगा। फादर निकोलस ने बताया कि चीनी भाषा का संकट शब्द दो बातों को अभिव्यक्त करता है। इसका पहला अर्थ है कुछ खतरनाक तथ्य, जबकि दूसरा अर्थ है अवसर। विश्व रेडियो दिवस पर संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव अंतोनियो गुतेरेस ने गुरुवार को जारी अपने संदेश में कहा कि रेडियो में अभी भी लोगों को एक साथ लाने और समुदायों को महत्वपूर्ण समाचार और जानकारी प्रदान करने की शक्ति है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित विश्व रेडियो दिवस गुरुवार को मनाया गया। इस अवसर पर श्री गुतेरेस ने कहा कि द्रुत गति से बढ़ते मीडिया विकास के युग में भी रेडियो का मिशन महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा, रेडियो अपने प्रारूपों, अपनी भाषाओं और स्वयं रेडियो कर्मियों के बीच विविधता का अद्भुत प्रदर्शन प्रस्तुत करता है। यह विश्व को एकता और शांति का महत्वपूर्ण संदेश भेजता है। उन्होंने कहा, जैसा कि हम सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने और जलवायु संकट से निपटने का प्रयास कर रहे हैं, सूचना और प्रेरणा के स्रोत रूप में रेडियो की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण है। 13 फरवरी को मनाए गए विश्व रेडियो दिवस के उपलक्ष्य में शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति संबंधी संयुक्त राष्ट्र संघीय एजेंसी यूनेस्को ने तमाम विश्व के रेडियो स्टेशनों का आह्वान किया था कि वे अपने न्यूज रूम्स में और प्रसारणों में भी विविधता का प्रसार करें। यूनेस्को ने अपील की कि रेडियो से संबंधित एएम, एफएम, कार में डिजिटल रेडियो, वेब पर उपलब्ध स्ट्रीम स्टेशन अथवा मोबाइल फोन्स पर पॉडकास्ट, सभी माध्यमों द्वारा विविधता के महत्व को प्रकाशित किया जाए तथा लोगों के बीच सहिष्णुता और शांति का संदेश प्रसारित किया जाए। सन 1946 में संयुक्त राष्ट्र संघीय रेडियो की स्थापना की स्मृति में प्रतिवर्ष 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। 13 फरवरी से एक दिन पहले यानी कि 12 फरवरी को वैटिकन रेडियो की वर्षगांठ मनाई जाती है। वैटिकन रेडियो से पहला सिग्नल 12 फरवरी 1931 को भेजा गया था। और इसी के साथ वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।